हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। युग की कुछ देर पहले आदित्य सिंघानिया से वीडियो कॉल पर बात हुई थी। उन्होंने कॉल पर कृषा का चेहरा दिखाया था, जो उस वक्त बेहोश थी। आदित्य सिंघानिया ने युग को बता दिया था कि वो उसे हमेशा के लिए युग से दूर लेकर जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब कृषा उसके ही खिलाफ खड़ी होगी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी युग के चेहरे पर परेशानी का कोई भाव नहीं था। उल्टा उसने आदित्य को चैलेंज किया था कि वो खुद कृषा को उसके सामने लेकर आएंगे। आदित्य सिंघानिया से बात करने के बाद युग वापस ऊपर पहुंचा। हर्षवर्धन और हरलीन उसके आने का ही वेट कर रहे थे। युग को ऊपर देखकर हर्षवर्धन जी ने तुरंत पूछा, कुछ पता चला कृषा कहाँ है? युग ने उनकी तरफ देखा और सर्द लहजे में कहा, आदित्य सिंघानिया ने वीडियो कॉल किया था और ये बताया है कि वो कृषा को मुझसे दूर लेकर जा रहा है। तुम ये बात इतना नॉर्मली कैसे बता सकते हो? वो कृषा को तुमसे दूर कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़े होकर ये बात आराम से बता रहे हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं? हरलीन गुस्से में उस पर चिल्ला कर बोली, क्योंकि युग कुछ करने के बजाय वहाँ रिलैक्स होकर खड़ा था। युग ने हरलीन की तरफ देखा और फिर सख्त लहजे में कहा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना है बुआ, आदित्य सिंघानिया मुझे कृषा से दूर करना चाहता है, सो अब कृषा को खुद मेरे करीब आने के लिए रास्ता बनाना होगा। युग की बात सुनकर हरलीन का गुस्सा बढ़ गया। उसने युग का हाथ पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, ये क्या सिद्ध पकड़ कर बैठ गए हो तुम? तुम अच्छे से जानते हो वो तुम्हारी तरह नहीं है जो तुम्हें ढूंढ लेगी। आदित्य सिंघानिया उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कहीं उन्होंने उसकी शादी कहीं और कर दी तो? हरलीन की बात पर सहमति जताते हुए हर्षवर्धन ने कहा, हरलीन बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम उसे ठीक से नहीं जानते हो, वो अपनी जिद और गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तुमसे दूर करने के लिए उन्होंने खुद की पोती तक को किडनैप कर लिया, तो आगे वो किस हद तक जा सकता है तुम समझ सकते हो। युग ने उनकी तरफ देखा और ईविल स्माइल दी। ऐसी सिचुएशन में युग स्माइल कर रहा था, ये देखकर हर्षवर्धन और हरलीन दोनों ही हैरान हुए। युग ने उनके सवालों के जवाब देते हुए कहा, यही तो मुझे देखना है कि वो किस हद तक जाते हैं। पता है बुआ, मुझे पता था कि एक ना एक दिन ये जरूर होगा, और मैंने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। आदित्य सिंघानिया चाहकर भी कृषा को मुझसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उन सातों पड़ाव की चाबी आज भी मैं और कृष ही हैं। उन्हें अपनी लेगेसी वापस चाहिए होगी, और वो मेरे और कृष के साथ आए बिना उन्हें नहीं मिल सकती। उन्हें कृषा को जितना तैयार करना है कर सकते हैं, उसे लौटकर तो मेरे पास ही आना है। एक वक्त ऐसा था जब आदित्य सिंघानिया माफिया प्रिंसेस को लेकर श्योर थे कि कोई भी किडनैप करने वाला इंसान उसे खरूच भी नहीं पहुंचाएगा, तो आज मैं भी उतना ही श्योर हूं, ज्यादा टाइम तक वो कृषा को मुझसे दूर नहीं रख पाएंगे। युग का कॉन्फिडेंस देखकर हर्षवर्धन और हरलीन को हैरानी हुई। कल रात वो कृषा के जाने पर पहली बार अपने इमोशंस शो कर रहा था, तो अगली सुबह युग वापस नॉर्मल हो गया था। अब उसे कृषा के दूर जाने से फर्क नहीं पड़ रहा था। युग ने फिर उन दोनों की तरफ देखकर पूछा, आपके सवाल जवाब यहीं खत्म हो गए तो मैं जाऊं, मुझे करने के लिए बहुत सारे काम हैं। हरलीन और हर्षवर्धन ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, तो युग भी बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाते ही हरलीन ने हर्षवर्धन से धीरे से कहा, डैडी जी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, जरूर अंदर से परेशान होगा और बता नहीं रहा। उसकी परवाह तुम मत करो, वो ऐसे ही खुद को डेविल नहीं कहता, उसे खुद को संभालना आता है। हाँ, रात को अचानक से कृषा उससे दूर गई तो वो सहन नहीं कर पाया, पर अब ठीक है। लगता है एक बार फिर इस खेल की बिसात पिचने वाली है, जहां युग और कृषा एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के खिलाफ होंगे। हर्षवर्धन ने जवाब दिया, उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। युग और कृषा एक दूसरे से प्यार करते थे, ये उन्होंने भी महसूस किया था, और अब अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ हुए तो युग माफिया की दुनिया में तबाही ला देगा। हरलीन भी उसकी बात से सहमत थी, वो युग से बात करने जा रही थी, तभी युग लगेज के साथ नीचे पहुंचा। उसने उन दोनों की तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहा, कृष को मुंबई में रहना था, इसीलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ था, बाकी आप जानते हैं कि मेरा घर लंदन में ही है, मैं वापस वहीं जा रहा हूँ। आई होप आप में से कोई भी मेरी प्राइवेसी को इंटरप्ट नहीं करेंगे। हरलीन उसे रोकती उससे पहले युग वहां से जाने लगा। हरलीन उसके पीछे जा रही थी, तभी हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, जाने दो उसे, अपनों के करीब रहता है तो खुद को कमजोर महसूस करता होगा। बाकी जब तक लंदन में था, किसी की औकात नहीं थी कि युग राणा को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी सके, वो वहां पर जाकर सब कुछ अपने तरीके से हैंडल कर लेगा। आदित्य को अपनी लेगेसी वापस चाहिए होगी, तो वो कृषा पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। देखना, कुछ ही महीनों में उसे कृषा और युग को आमने सामने लाना ही होगा। हरलीन ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर हर्षवर्धन के साथ वहां से राणा मैंशन जाने लगी। युग और कृषा के मुंबई आने के बाद उनकी फैमिली काफी हद तक पूरी हो गई थी, लेकिन अब दोनों ही वापस जा चुके थे तो उनकी लाइफ पहले की तरह बोरिंग होने वाली थी। युग अकेले ही लंदन गया था। उसने मलिक को मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया था कि वो अर्जुन के साथ लंदन पहुंच जाए। किसी भी कीमत पर युग अर्जुन को छोड़ने वाला नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य सिंघानिया कृषा को लेकर निकल चुके थे। शब्द और सारा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। शब्द और सारा दोनों ही राणा मेंशन वापस पहुंच चुके थे। इस वक्त वहां का माहौल काफी गमगीन था। शब्द ने अंदर आते ही कहा, युग कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है, उसका नंबर नहीं लग रहा है। युग वापस लंदन जा चुका है, हरलीन ने बुझी आवाज में कहा। युग के लंदन जाने की बात सुनकर सारा को बहुत गुस्सा आया। वो सिर हिलाकर बोली, वो ऐसे कैसे लंदन जा सकता है? क्या वो कृषा को नहीं ढूंढेगा? ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, और अब इतनी जल्दी हार मान ली उसने। सारा ने जो भी कहा वो हर्षवर्धन जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, एक बात अच्छे से याद रखना कि युग राणा हार मानना नहीं जानता है। रही बात कृषा को ढूंढने की, तो उसे कृषा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक दिन आदित्य सिंघानिया खुद उसे अपने पास लेकर आएगा, और वो दिन कब आएगा कोई नहीं जानता। वो कृषा को माफिया ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आप जानते भी हैं उसमें कितना टॉर्चर होता है। दादू किसी पर रहम नहीं करते, मेरी भी ट्रेनिंग हुई है और मैंने भी बहुत कुछ सहा है, सारा ने गुस्से में जवाब दिया। किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर सारा को और गुस्सा आ गया। उसे यही लगा था कि अब तक युग कृषा को ढूंढने जा चुका होगा। क्या तुम्हें इस मामले में कुछ कहना है शब्द राणा? सारा ने उम्मीद भरी नजरों शब्द की तरफ देखा। शब्द ने धीरे से कहा, युग खुद ही देख लेगा, अगर वो इतना केयरलेस है तो जरूर उसके दिमाग में कुछ सॉलिड प्लान है। प्लेन माई फुट, मैं अपनी बहन को अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तुम लोगों की वो कुछ नहीं लगती होगी, लेकिन मुझे उससे प्यार है, सारा ने गुस्से में जवाब दिया। उसे शब्द से ये उम्मीद नहीं थी। वहां कृषा को लेकर सब इतने लापरवाह हो रहे थे, ये देखकर सारा को बहुत बुरा लगा और वो वहां से चली गई। आज शब्द ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। कृषा और सारा दोनों का ही रिश्ता राणा फैमिली से एक साथ जुड़ा था, तो आज एक साथ ही दोनों का रिश्ता उस घर से टूट चुका था।
दूसरी तरफ आदित्य सिंघानिया कृषा को लेकर लगभग 20 घंटे का सफर तय करने के बाद एक अनजान जगह पर पहुंचे। रास्ते में कृषा को बेहोश रखने के लिए उन्होंने उसे कुछ दवाइयां दी थीं, ताकि आराम से उसे अपने अड्डे पर लेकर आ सके। आदित्य सिंघानिया कृषा को लेकर अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। वहां दूर दूर तक इंसान का नामो निशान तक नहीं था। एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसके आसपास के हिस्से को फिजिकल ट्रेनिंग के हिसाब से तैयार किया गया था, और उससे थोड़ी दूरी पर घना जंगल। ऐसा लग रहा था ये जगह आबादी से काफी दूर थी। वहां पहुंचते ही आदित्य ने अमृता से कहा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है ताकि उसके सारे मेडिकल टेस्ट हो सकें। पहले इसे फिजिकली स्ट्रांग करना होगा, उसे थोड़ा टाइम तो दीजिए, अमृता ने कहा। अभी अभी वो युग से अलग हुई है और आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, और मैं तो कहती हूँ क्या जरूरत है ये सब ट्रेनिंग वगैरह लेने की। आप चाहते थे कि युग और कृषा अलग हो जाए, आपको वो मिल चुका है, फिर क्यों बेवजह आप कृषा को टॉर्चर कर रहे हैं? अमृता की बात सुनकर आदित्य के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो उस पर चिल्ला कर बोले, मेरे बेटे शांतनु के बाद मेरी लेगेसी कृषा या अर्जुन को संभालनी थी, लेकिन दोनों ही इससे दूर रहे। उल्टा मुझे इन्हें बचाने के लिए सारा को माफिया प्रिंसेस के तौर पर आगे करना पड़ा। अब वक्त आ गया है कि कृषा अपनी जिम्मेदारी समझे। जैसे बाप का बिजनेस बेटे आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही कृषा को मेरा काम संभालना ही होगा। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अमृता के पास आदित्य की बात का कोई जवाब नहीं था। उसने चुपचाप उनकी बात पर हामी भरी। कुछ ही देर में एक डॉक्टर आया था। उसने कृषा के सारे टेस्ट किए और फिर अगले दिन रिपोर्ट के साथ आने का कहकर वापस चला गया। शब्द और राणा फैमिली से बहस होने के बाद सारा के पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए वो सिंघानिया मेंशन में आ गई थी। उसे इस वक्त पूरी राणा फैमिली पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कृषा को ढूंढने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। वहीं सारा के घर पहुंचने की बात आदित्य सिंघानिया तक भी पहुंच गई थी। उन्होंने वहीं से सारा को कॉल किया। आदित्य सिंघानिया ने सारा से सख्त आवाज में कहा, क्या बात है? जासूसी करने के लिए वापस अपने घर तक पहुंच गई? अब आ ही गई हो तो बता देता हूं उन्हें, कृषा वापस नहीं मिलेगी। जाकर कह देना उस युग राणा से कि अब उसे उसकी क्वीन नहीं, एक राइवल मिलेगी। आदित्य की बात सुनकर सारा ने आईज रोल की और जवाब में कहा, मैं किसी की जासूस नहीं हूँ, आप भी अच्छे से जानते हैं मैंने आज तक ये काम नहीं किया है। तो फिर मेरे घर पर क्या कर रही हो? आदित्य ने हैरानी से पूछा। सारा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर धीरे से कहा, क्योंकि मैंने राणा मेंशन और शब्द को छोड़ दिया है। आप सही थे दादू, उन्हें कृषा की कोई फिक्र नहीं है, पूरी राणा फैमिली ऐसे ही बिहेव कर रही है, युग भी लंदन वापस चला गया है, सारा ने उन्हें सब बता दिया। सारा की बात सुनकर आदित्य को भी बहुत हैरानी हुई, खासकर युग का रिएक्शन जानकर। आदित्य सिंघानिया ने एक बार फिर पूछा, क्या सच में युग वापस लंदन चला गया है और उसे कृषा की कोई फिक्र नहीं है? आपको सुनाई नहीं दिया क्या दादू मैंने क्या कहा?
उस फैमिली में किसी को कृषा की फिक्र नहीं है। दादू प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे आपके पास आना है और आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये जासूसी करने जैसा चीप काम कभी नहीं करूँगी, सारा ने सख्ती से कहा। इस मामले में आदित्य सिंघानिया उसका यकीन कर सकते थे क्योंकि उन्होंने पहले भी सारा को जासूसी करने जैसा काम दिया था। उसे ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो हर बार इस काम को बिगाड़ कर आ जाती थी। फिर हार मानकर उन्होंने सारा को कभी किसी की जासूसी के लिए नहीं भेजा। आदित्य सिंघानिया ने सारा की बात पर हामी भरी और उसे वहाँ की लोकेशन बता दी थी। कॉल कट हो जाने के बाद सारा ने खुद से कहा, हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे तुम सिंघानिया फैमिली के साथ रहो या राणा फैमिली के साथ। अगर युग से प्यार करती हो तो तुम्हें युग तक भी पहुंचा कर रहूंगी। लोकेशन मिलते ही सारा तुरंत अपनी पैकिंग करने लग गई। उसने इस बारे में योग या शब्द दोनों में से किसी को नहीं बताया कि वो कृषा के पास जा रही है। आदित्य सिंघानिया कृषा को जिस जगह पर लेकर आए थे वहां उसे होश आ चुका था। कृषा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो जानती थी कि वो एक अनजान जगह पर पहुंच चुकी है, वहां से वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकती और ना ही यहां आदित्य और अमृता से बात करने का कोई फायदा है। वो उसे युग के पास लेकर नहीं जाएंगे। कृषा ने उठकर इधर उधर देखा और फिर इमोशनल होकर कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है युग, तुम मुझे ढूंढ लोगे ना? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। तुम जो कहोगे मैं कर लूंगी, पर प्लीज मुझे ढूंढकर यहाँ से ले जाओ, बोलते हुए कृषा रोने लगी। कृषा वहाँ बैठकर खुद से बातें कर रही थी, तभी अमृता आई। वो उसके लिए खाना लेकर आई थी। अमृता ने कृषा के आंसू पोंछे और उसे सहलाते हुए कहा, तुम्हें अपनी ये मासूमियत और बचपना छोड़ना होगा कृषा। बहुत टाइम तक तुम अपनी जिम्मेदारियों से दूर रह ली, लेकिन अब इससे भागने का नहीं, इसे अपनाने का वक्त आ गया है। मुझे युग के पास जाना है अमू, प्लीज मुझे उसके पास लेकर चलिए। रोते हुए कृषा अमृता के गले लग गई। कुछ भी कहने से पहले अमृता ने इधर उधर देखा। वो तेज आवाज में कृषा से बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि पूरे घर में एडवांस्ड कैमरा सिक्योरिटी थी। गले लगने पर कृषा जब उसके पास आई तब अमृता ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब युग तुम्हें लेने नहीं आ सकता कृषा, उसकी कुछ मजबूरियां हैं। तुम्हें खुद को इस लायक बनाना होगा ताकि तुम उस तक पहुंच सको। इसके लिए तुम्हें अपने दादू की हर बात माननी होगी, चाहे वो तुम्हें युग से नफरत करने का भी क्यों ना कहे, तो तुम्हें उन्हें वो भी करना होगा। अमृता की बात सुनकर कृषा डरते हुए उससे अलग हो गई। अमृता ने हाँ में पलकें झपकाईं। इसका मतलब साफ था कि कृषा के पास अब आदित्य की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।